I am Professor Hamza Virali. I would like to ask Brother Ashok Sahani that you said that these journalists, they have put life of Taslima Nasreen in problem. And he says that Indian media is trying to save the life of Taslima Nasreen. So first you say, as a journalist, I don't know whether you are a journalist or not. No, good. So some journalists, they have put the life of Taslima Nasreen in danger. And he says that journalists are trying to save the life of Taslima Nasreen. I want to know what is right. Whether they have put her in problem or they are trying to take out her from the problem.
The problem is not that simple, of course. The problem is a bit complicated in the way, meaning the fundamentalists in Bangladesh had been eating for Taslima's head for a long time. Even earlier to the interview that she gave to Statesman. And if you ask me my personal opinion, they might have been misled by a wrong idea of nationalism. Because Taslima, on her way back to Dhaka from Paris, stayed in Calcutta, and on the top of it said that Calcutta is my second home. You tell that to anybody from Silsila in Bombay, for instance. If Imran comes to Bombay and says that Bombay is my second home, and the people in Pakistan are going to be bothered about it, or even if a person like Gavaskar goes to the cancer hospital function, then there's a lot of hue and cry in the newspapers about why should Gavaskar go, and you know, I mean, this is all mixed up. That's what I say. I mean, it's a bit complicated. But all the same, I mean, since the Statesman has not come out with an open apology, or open, unbarred, undeterred apology, that they had been the cause, they had been made the cause for this demand, and things would have been different.
मेरा नाम रवि है, महानगर से आया हूँ. मुझे डॉक्टर व्यास से एक सवाल पूछना है. आपने कहा कि हिंदू धर्म में संवाद का बहुत महत्व है, मतलब जो लोग खुद को हिंदू समझते हैं उन्होंने संवाद करना जरूरी है अपोजिट विचारों के लोगों से. बाला साहब ठाकरे ने नामांकन के सवाल के ऊपर किसी भी दलित से सवाल नहीं किया. लालकृष्ण आडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद के मसले पर किसी भी मुस्लिम लोगों से संवाद करने की कोशिश नहीं की. कोर्ट की तरफ से हो रही थी, वो भी उन लोगों ने नकारी है. क्या आप लोग, आपकी दृष्टि में बाला साहेब ठाकरे, लालकृष्ण आडवाणी, ये लोग हिंदू है?
सबसे पहले मेरी प्रार्थना यह है कि इस बेटर दैट वी डिस्कस प्रिंसिपल एंड थियरीज देन वी डिस्कस पर्सन एंड इवेंट्स. क्योंकि फिर प्रश्न आ जाएगा. मैं हिंदू धर्म शास्त्रों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ. संसार भर के सारे हिंदुओं के कार्यों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा. हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं अगर ये बताया गया हो, एक मिनट, हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं अगर ये बताया गया हो कि जो आपके विरुद्ध विचार वाले हों या जो आपके विचारों को स्वीकार न करें उन सबको आप मार डालिए या उनके अंगत छेद कर दीजिए, उनको देश निकाला दे दीजिए, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहीं उल्लेख हो तो आप हमें बताइए, उस पर मैं विचार करने के लिए तैयार हूँ. किन्होंने क्या किया व्यक्तिगत रूप से, कौन क्या कर, और खासकर आपने जो प्रश्न पूछे हैं बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के बारे में. आज की भारतीय राजनीति इस प्रकार की है कि मैं उससे दूर रहना ही पसंद करूंगा. हालांकि किसी भारतीय नागरिक के लिए या संसार में किसी नागरिक के लिए राजनीति से एकदम दूर रहना बड़ा कठिन है. फिर भी एक बात भी मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वयं अपने आप से ही पूछ लीजिए, या ये इस प्रश्न का सबसे ज्यादा सही उत्तर लालकृष्ण आडवाणी या बाल ठाकरे साहब भी दे सकते हैं कि सनातन वैदिक धर्म के हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वे अपने को हिंदू मानते हैं या नहीं. मैं कौन होता हूँ निर्णय देने वाला. हाँ, इतनी जब मैं चुप रहा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा. हो सकता है अब तक हमने धर्म में रहा. नायक साहब ने जो कहा कि फतवा का केवल ओपिनियन होता है, ये आज मैंने जाना. अब तक हम लोग ये समझते थे कि फतवा माने किसी धर्माचार्य के द्वारा या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा कोई जो आदेश दिया जाए उसको फतवा कहते हैं, ऐसा मैं अब तक समझता था। हो सकता मैं भूल में रहा हूँ। ये नहीं भूल हो सकती, इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी दर्शन विशेष के बारे में मेरे प्रश्न उपनिंग का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ हम विचार ये कर रहे हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विरुद्ध विचार वालों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। वहाँ जब संवाद की बात आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पहले हमेशा पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष रखा जाता है। आप ये जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के समय तक शास्त्रार्थों की धूम मची रहती थी। दयानंद सरस्वती शायद प्रारंभिक सुधारकों में से, जिनको सुधारक लोग कहते हैं, धर्म में परिवर्तन करने वाले जो माने जाते हैं, उनमें दयानंद सरस्वती प्रारंभिक लोगों में से थे। आप अच्छी तरह जानते हैं दयानंद सरस्वती के जीवन में और उनके पश्चात भी लगभग 50 वर्षों तक सनातनियों में, आर्य समाजियों में, स्थान स्थान पर, शहर शहर में, गांव गांव में शास्त्रार्थ होते रहे, पुस्तकें छपती रही, सैकड़ों और हजारों पुस्तकें छपती रही। दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य, रामानाचार्य आदि के विचारों में एक दूसरे के विरोध होते हुए आज तक हजारों पुस्तकें छपी हुई हैं। ये संवाद के ही तो उदाहरण है। आज का कोई एक नेता अगर किसी के साथ संवाद बिना किए कोई काम कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी आप हिंदू धर्म शास्त्रों पर कैसे डाल सकते हैं?
यहाँ के कर्मों का आपके हिसाब से कर्म किसको बोलते, कर्म का क्या है?
आपने बात का प्रश्न पूछा क्योंकि अन्यथा भी मैं ये चाह रहा था। छात्र कहानी साहब ने जो अपने भाषण में एक बात कही थी कि the problem is that every religion has a book and we can't believe in a book written before 1000 years or 1000 years or crores of years। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा निवेदन यह है कि यू आर एट फुल लिबर्टी नॉट टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन एंड रिमेन अनरिलीजियस, बट यू हैव नो अथॉरिटी और यू हैव नो लिबर्टी टू से दैट वी डू बिलीव द धर्म एंड डू नॉट बिलीव द धर्म ग्रंथ। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम नास्तिक रहना या परलोक को न मानना, इसकी छूट सबको है, आज के जमाने में भी है, पहले के जमाने में भी थी। लेकिन आप ये कहें कि हम धर्म को स्वीकार करते हैं लेकिन धर्म का फल परिवर्तन करते रहना चाहिए, उससे भी आपको मेरी बात का उत्तर देना पड़ेगा कि धर्म का फल अगर परलोक में मिलता है, अगर मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में मिलता है उनकी ओर से ये प्रश्न है। अगर आप ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में नहीं मिलता, धर्म का फल ईश्वर नहीं देता, तो धर्म कौन सी चीज है जिसको आप मानना चाहते हैं? धर्म है क्या चीज? अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि कर्म किसे कहते हैं। यहाँ तक हिंदू धर्म शास्त्रों का प्रश्न, हो सकता है कुछ अन्य संप्रदायों में ऐसा हो कि आप 7-6 दिन कुछ भी करें, एक दिन किसी पूजा गृह में जाकर पूजा करने तो आप धार्मिक बने रह सकते हैं, कहीं ऐसा हो तो मैं नहीं जानता। हिंदू धर्म शास्त्रों में जहाँ तक प्रश्न है, हमारे यहाँ प्रातः काल से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर प्रातः काल तक 24 घंटे 12 महीने और जीवन भर शरीर इंद्री मन से जो कुछ चेष्टा जो क्रिया हम करते हैं वो सब कर्म है और वो सब धर्मशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं किसी को किस दृष्टि से देख रहा हूँ ये भी एक कर्म है। अगर मैं अच्छी दृष्टि से पवित्र दृष्टि से देख रहा हूँ तो मैं पुण्य कर रहा हूँ, अगर मैं अपवित्र दृष्टि से किसी को देख रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, उसका भी फल मुझे मिलेगा। इसलिए कर्म को आप किसी एक सीमित क्षेत्र में कभी नहीं बांध सकते। शरीर इंद्री मन और बुद्धि इन सब के जो भी प्रयत्न हैं ये सारे प्रयत्न कर्म हैं और ऐसा कोई प्रयत्न नहीं होता जिसका फल केवल यहाँ मिलकर रह जाए। हर कर्म का फल कुछ न कुछ यहाँ के बाद भी मिलता है। जिनको ईश्वर पर विश्वास न हो, जिनको परलोक पर विश्वास न हो, उनसे हम अलग बात कर सकते हैं। आज का मंच मैं समझता हूँ उसके लिए नहीं है। अब ये नहीं कहते जो ईश्वर को नहीं मानते उनको हम एकदम छोड़ देंगे, हम उन पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। और तर्कों के आधार पर शास्त्र को छोड़ दीजिए, किसी शास्त्र को आप कुरान को मत मानिए, पुराण को मत मानिए, वेद को मत मानिए, बाइबल को मत मानिए, फिर भी हम तर्कों से और युक्तियों से ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कोई अलग बैठक उसके लिए बुला सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए हमेशा प्रश्न है कि जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है? हम अकेले में कभी, मैं 2 मिनट के लिए नाम चाहूंगा, मैं अकेले में तो हमारे प्रसिद्ध है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को पूरा अध्यापन करने के बाद फल दे दिए, जाओ एक एक फल ले जाओ, ऐसी जगह खा लो जहाँ कोई न देखता हो, जब वे वापस आए तो किसी ने कहा कि मैं एक बंद कमरे में मैंने कमरा बंद कर लिया, खा लिया, किसी ने कहा मैंने पानी में जाकर खा लिया, किसी ने कहा जंगल में जाकर खा लिया। एक शिष्य आया जिसने कहा गुरु जी मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहाँ कोई न देख रहा हो, इसलिए मैं कल वापस लेकर आ गया हूँ। तो ये भावना अगर मनुष्य में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे कोई अवश्य देख रहा है, और आज अगर हम छूट गए तो भी आगे फल मिलेगा, तो ही समाज में व्यवस्था ठीक रह सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि धर्म थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि काल्पनिक हो, मान लीजिए, हम नहीं मानते काल्पनिक, हम तो अत्यंत सत्य मानते हैं, पर जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि अफीम की गोली है, तो भी समाज की सुव्यवस्था के लिए वही अफीम की गोली परम आवश्यक है। आप भ्रष्टाचार निवारण नहीं, जो भ्रष्टाचार आएगा उसको आप कहाँ रोकेंगे? हाउ लॉन्ग यू कैन गो पीपल पुलिस और पुलिस? आज सारी अव्यवस्था इसलिए हो रही है कि परलोक और ईश्वर पर से लोगों का विश्वास हट गया है, धर्म पर से लोगों का विश्वास हो गया है, हट गया है, केवल अपनी बुद्धि पर लोगों का विश्वास है। अगर मैं अपराध करके पुलिस से बच सकता हूँ, या पुलिस को घूस चलाकर बच सकता हूँ, या अंतरिम न्यायालयों में भी कुछ उपद्रव करके या कुछ भी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर बच सकता हूँ तो अपराध करने में कोई दोष नहीं है। ये बुद्धिमत्ता की बात है। ज्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे उपाय सोच करके अपने को बचा लेने का प्रयास करते हैं और बचते हैं, इसलिए वो सोचते हैं बच गए। अपराधों के बढ़ने का मूल कारण ये है। आप जितना अधिक सेकुलरिज्म का प्रचार करते जाएंगे उतना अधिक अपराध बढ़ता चला जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अंततः इन अपराधों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म पर हम ये ध्यान रखें कि ईश्वर भी उसे देख रहा है।
मेरा सवाल तो धर्म का सवाल है। मेरा सवाल डॉक्टर व्यास से है। आप सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने कहा कि धर्म के अंदर कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, और मैं आप
ये मैंने नहीं,
अच्छा आपने नहीं कहा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि किसी सनातन धर्म के किसी शास्त्र में हिंदू वर्ड लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है कि ये हिंदू धर्म ही कोई आने वाला है? अगर ये नहीं है तो ये सनातन धर्म में ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया, और ये हिंदू वर्ड सनातन धर्म से किस तरह से रिलेटेड है, और वो कहाँ से आया हुआ है?
ठीक है, पहली बात ये है कि हिंदू शब्द आप जो समझ रहे हैं कि वो पारसियों के या पारस वालों के आने के बाद हिंदू शब्द हमारी जाति में प्रचलित हुआ, वो थोड़ा आपका भ्रम है। कालिका पुराण आदि कुछ ग्रंथों में हिंदू शब्द का पहले शब्द हिंदू विंध्यमावेशन वहाँ स्पष्ट उल्लेख है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति आपको संस्कृत के पुराने कोशों में मिल जाती है, हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर तक ये प्रथा रही है। किसी का पहला शब्द और अंतिम शब्द, पहला अक्षर अंतिम अक्षर मिलाकर पूरा शब्द बन जाता है। आज भी ये प्रथा अन्य भाषाओं, डॉक्टर में डी आर लिख देते हैं, डॉक्टर का पहला अक्षर डी, अंतिम अक्षर आर, डी आर का अंतिम डॉक्टर, एम आर का अंतिम मिस्टर। वैसे हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर पर्यंत का जो देश है वो हिंदू देश है, इसलिए हिंदुओं का जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, ऐसा उल्लेख पुराणों में और उसके प्राचीन साहित्य में मिलता है। नंबर वन। नंबर दो, भाषा विज्ञान के दृष्टि अगर आप विचार करें तो सिंधु विदेशी जब यहाँ आए तो उनको सिंधु नदी सबसे पहले मिली, सिंधु के आधार पर सिंधुस्तान बना, और सकार का उच्चारण हकार करने की कई भाषाओं में प्रवृत्ति है। इसलिए जैसे सप्ताह का हफ्ता, सरस्वती का हरस्वती, तो इस आधार पर भी सिंधु का हिंदू बनकर सिंधुस्तान के हिंदुस्तान बन गया है। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि कोई एडिशन नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा कि जो मूल शास्त्रों के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में परिवर्तन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने वाले हम नहीं है, इतना ही मैंने कहा।
You have given the correct definition of the word Hindu, and you said that Hindu is a person living in India, in Hindustan. But that's a geographical definition. By that, if you agree with that definition, even I am a Hindu. But what Brother was referring to is the theological definition of Hinduism mentioned in the Hindu scriptures, which I, being a student of comparative religion, I don't come across any. This definition has also been agreed by Swami Vivekananda that Hindu is a geographical definition, meaning those people living on this side of the Indus Valley civilization. By that, I am a Hindu. But actually, the religion should be called a Vedantist religion, those who follow the Vedas. And one more clarification regarding, you said that I had mentioned that fatwa is opinion. Yes, I did mention it. But if that opinion is given by the judge sitting on the seat of judgment, it is taken as a judgment and the verdict. So fatwa can also mean a word. Let me clarify. And Quran clearly says in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 59, that if you are in doubt, ask the person who knows. So if the Quran speaks about medicine, and if you have a doubt, you will take fatwa from a doctor. I have a right to give fatwa when Quran is talking about medicine. I have a right. I have a right to opinion. But if it's talking about fiqh and masail, I can give fatwa, but it will have no value. You will have to go to a faqih. In the same way, if the fatwa is given by a judge sitting on the judgment seat, it is taken for what it is. But given by a layman, it is just a layman's opinion. Sister had asked a similar question. She said we have talked enough of Satyama Nati Lajja. Now we're going to talk on the Satmic verses, and I can give a lecture on that, which I don't intend doing. Regarding the verdict, again it comes to the same thing as I mentioned earlier, the world does not change. Same. But if you want me to throw some light on the Satmic verses, I do agree that Salman Rushdie has abused our beloved Prophet Muhammad, may peace be upon him. He has abused his wife, etc., who are the Ummul Mu'mineen, the mother of all the Muslims. He has. But what I seem to realize, that why hasn't some scholar thrown some light on what else has written on that book, which I have given the opinion. Why I'm giving the opinion? Because I have read that book, Satmic Verses. I have read that. If you want to read, you can go to London and America. There's a copy freely available. I have been to London and America. Just giving a gist on what Salman Rushdie, besides he abusing the Muslim characters, he has even abused his protectors. The London people, the British government who has protected them, he has abused them. On the very first page, or you could say the first page of the first chapter, actually page number 3, he has abused the Londoners. He says, London Bhai, the first page of the first chapter, that's page number 3. London Bhai, and he abuses. I can't use that word, believe me, I can't use that word. I tried to use that word when I was having a dialogue or debate with a priest while I was quoting the Bible in Deuteronomy, chapter number 23, verse number 2, which says, the dash, I don't want to say the word, the dash, shall not enter the congregation until the 10th generation. If you want to know the exact word, I'll just give a small brief joke that when there was a party going on, everyone who wanted something on the table did some rhyming. So the Duke said, Queen so fine, pass the wine. So one person who brings not this, not that, and he wanted to have some custard. So he said, Duke the dash, pass the custard. So now you know what the word is. If you don't know, you can refer to the Bible. It's mentioned 3 times. And Salman Rushdie used that word 29 times. 29 times. Imagine. And the irony is that the British government speaks for freedom of speech. According to an article in the Daily News in London, 22nd of May, 1989, there was a big article, call for ban. Ban for whom? Not for Salman Rushdie. Call for ban for Mickey, who was an actor from America. Mickey, he came and he used the four-letter word for the policies of Margaret Thatcher. I sure you don't want to repeat that four-letter word. It is father, uncle, cousin, king. Still, if you don't know, ask the person who knows. He used that four-letter word to describe the policies of Margaret Thatcher and the MPs, the Tories of the parliament. They said, call for ban. Now Salman Rushdie uses that same word, but makes it active, adding ing, in. Four letter, he makes it 7 letter. And in one paragraph, on page number 270, in one paragraph, he uses that word 4 times. Four letter word, in, making acting, describing the activities of Margaret Thatcher, and it goes down the throat of the Britisher. Why this vastness? An American actor uses a four-letter word for Margaret Thatcher policy, you call for ban. And none of the people who supported Salman Rushdie raised their voice to support that American actor. Why? Why the double policy? Because he uses it 4 times, making it active. And if you read that book, he's used that word 52 times. 1.3. 52 times. I've read the book, therefore I'm saying. And 5 times he's used only that four-letter word. You can make a dictionary out of it. In American, in Allen, all these can make a decision of it. And he has even abused the Prime Minister, the ex-Prime Minister, who was the Prime Minister at that time, and he says that, and he calls it a nickname, like he does for all the characters. He is called the Chamcha. He typifies himself as Chamcha or as the Debris or Sulu. He calls Margaret Thatcher Maggie, and what he says, torture. No renewal of torture, torture means Thatcher. He says torture and full stop. One word sentence, beautiful. I do appreciate Salman Rushdie for his pen. One word sentence, torture, full stop. Maggie the five letter word. I don't repeat it. It's a female dog. He says torture, full stop. Maggie the five letter word. That's right, I'm answering the question, brother. Because she said that she wants me to throw some light on the Catholic verses and on the verdict of Salman Rushdie. Regarding the verdict, it remains the same as my previous answer regarding throwing light and throwing light, brother. If you give me permission, just a couple of more minutes, so that how many of you out here knew all this was mentioned in the Catholic verses? Oh, very good. Two, three, four, and three. So, did you know all this was mentioned? Do you know Thatcher referred to Thatcher? Oh, very good. We have intelligent people out here, but the masses don't know. Fine. Now please let me answer, brother. Let me answer. I do agree that people will say that Margaret Thatcher, she's an iron lady. She won't get moved. She's very strong. I do agree. Even if you call her the pilot of the world, even if you call her a female dog, she won't get moved. But imagine if you go to her son, Mark Thatcher, you might have seen him on TV playing soccer with rugby. If you go to Mark and say, Mark, Salman Rushdie has called you an SOB, son of a pilot of the world, I'm sure Mark will humble you. He will not believe in freedom of speech. If you tell Mark that Salman Rushdie has called you an SOB, son of a pilot of the world, he will surely hammer you. Even the British people are sensitive, but their sensitivism is, everyone has different levels of sensitivism. Some people may be sensitive in particular words. Like for example, if you go on the road, brother, people on the roadside, they keep on abusing each other. Maasya par bhinja, the same word which Salman Rushdie has used in his. Imagine he uses Hindi words, brain and four letter word. So, if those people, if you abuse that part, he's not sensitive at all, because he's used to abuse. But if you call him in a very plain language, which is less insulting than the abuse, and tell that maybe your mother is a prostitute, even that roadside man will feel bad, he will feel hurt. Every man is sensitive depending upon his individual field. And the British government, which calls for freedom of speech, it does not believe in freedom of speech. Because when Sheikh Jidad said that give me 5 minutes on the BBC to quote only the verses that Salman Rushdie has said, and I will give £50,000 to any charitable organization, they refused. ABC, American Broadcasting Corporation, they refused. He said, I will pay $50,000 only to quote. You believe in freedom of speech? I will quote Salman Rushdie's book, give me $50,000. They didn't agree. This is as far as freedom of speech goes. And regarding the verdict, sister, the answer is the same as I gave for Tasleema Nasreen.
I'd like to say something, and very briefly. As I said earlier, the fatwa of Khomeini is inexcusable. If it could be revoked, or rather, it could be revoked, as that recent news item said, about 5 years later, now, since then, it could have been revoked 5 weeks later. But it has not been revoked because of political reasons. That's the first thing, as I keep on insisting, in many of these religious quarrels, look for the political angle in it. That's the first. Secondly, I don't think that Rushdie himself is entirely to be excused either. He has deliberately adopted what I would call a very Western arrogant position. Now, if you believe in freedom of speech without responsibilities, be ready to take the reaction from wherever. So instead of going underground, as you said, with all your money, stand up and be counted. If I abuse you in public, I should be prepared for a kind of reaction from you and not go underground. The very government that he abused earlier is the one that is protecting him. I think there's a great anomaly over here, but realize that there's no logic in these matters. Realize for one thing that there is, in the Anglo-Saxon world particularly, a growing feeling that militant Islam, in the Islamic fundamentalism, has now taken the place as enemy number one after the death of communism. communism is no longer now any kind of military threat. Instead, it is now militant Islam. You know all these things from the Gulf War, you know, Iran, and so on and so forth. And that's what I said a little earlier. You must understand that a lot of fundamentalism comes from firstly a certain vision of society which is not shared by a Western secular ethos. Secondly, that a lot of countries in West Asia particularly are reacting to a lot of Western arrogance and reacting to a post-colonial epoch, whereas they would like to stand on their feet as independent nations and realize that they can't. Even the rich Arab countries cannot. You know that, for the matter of fact. So, understand that a lot of these gut reactions to Rushdie as a symbol, or George Bush as another symbol, or Israel as another symbol, all these things come in a vast and very complicated global scenario in which now Islamic fundamentalism is the latest whipping boy, which earlier, for example, it would have been Russia, the Soviet bloc, and so on. You know.
This is possibly the last question. Yeah.
I agree with you, and the point is just this, that if somebody is to be revered, then he has to be put beyond criticism. I don't think we live in a society in which that principle would work. I think everything needs criticism. Everything can be criticized. Why not? Why not? Whether it is religion, whether it's a religious person, whether it's king, or whether it's those persons in power, why not? That is freedom of expression.
I hope you are a journalist. Then this question will be to you.
Okay.
So, as Brother Ashok Sami said, that it is journalists who have put the life of Taslima Nasreen in problem because of irresponsible behavior. And we see that the journalists, they often do irresponsible things. So what is the punishment to such irresponsible journalists in your society of journalists? Because of their irresponsibility, many problems are created in this country. So what punishment is there for those type of people in your society of journalists?
I am a journalist by profession, but here I am a chairman, and chairman always says no comment. So that is my reply. Anyone, is there to be a water tank, or what is the procedure now? I think we had had, it's already 6:15, and pardon? What about the one last question on karma. I think, you know, being Indians, you know, we are so fond of karma. It's better to end with yes, last possible.
वहाँ मेरे में है कि हिंदू धर्म शास्त्र में दलित नाम का कोई शब्द नहीं है. ये अंग्रेजों का दिया हुआ डिप्रस्ट का अनुवाद के रूप में चल पड़ा है. हमारे यहाँ भाइयों के समान एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, अग्रज और अंत्यज, ये शब्द हमारे यहाँ चल रहे हैं. अब रही बात ये कि उनका क्या कर्म है, मैंने आप अगर ये जानना चाहें ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों इन सबके अलग अलग क्या कर्म होते हैं, तो मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि कुछ धर्म या कुछ कर्म ऐसे हैं जो मानव मात्र के लिए समान है। मृत्यु क्षमा दमह अत्ययम शौचम इंद्रिय निग्रह, इस प्रकार के मनु के बतलाए हुए कुछ धर्म ऐसे मानव मात्र के समान है। फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति के लिए जो अलग अलग कर्म हो सकते हैं उनको कृपा करके आप इस दृष्टि से नहीं देखें कि ये छोटा है या ये बड़ा है, ये अच्छा है या ये बुरा है, ये सम्मानजनक है या अपमानजनक है। समाज के धारण के लिए सभी के सभी कर्म परम आवश्यक होते हैं। समाज के धारण के कोई कर्म ऐसा नहीं है जो अनावश्यक हो या जिसको हम छोटा या अपमानजनक समझें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं एक वैद्य हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी दवाखाने में, मैं केवल दो तीन कहूँगा, किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी दवाखाने में ये व्यवस्था नहीं होती कि पेशेंट जाए और अपने आप दवा चुन ले। सब जगह यह होता है कि पेशेंट को जाकर किसी डॉक्टर के सामने अपने को पेश करना पड़ता है, डॉक्टर उसका निदान करता है और वो उसको बतलाता है कि तुम इस दवा से अच्छे होगे, ये दवा तुम लो। हिंदू धर्म में ठीक यही व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो आप अपने मन से जो करना चाहें वो आप करें, जो आपके लिए धर्म हो जाएगा और उसका आपको अच्छा फल मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। आपके लिए क्या कर्म है ये आपका धर्मशास्त्र आपको बतलाएगा, वो कर्म करने पर भी आपको अच्छा फल मिलेगा। इसमें जिसको बंधन लगता हो, इसमें जिसको अपमान लगता हो, इसमें जिसको धर्मशास्त्र के प्रति द्वेष उत्पन्न होता हो, मेरे दृष्टि से ये गलती पर है, वे भूल कर रहे हैं। क्योंकि अगर वैद्य के नाते सुन, मैं एक उदाहरण दूंगा, मेरे पास चार रोगी आते हैं, एक को मैं गोभी देता हूँ, एक को काढ़ा देता हूँ, एक को मैं कड़वी दवा देता हूँ, एक को मैं चाटने की क्या ना प्लास मीठी चीज दे देता हूँ। अगर जब तक मेरी नीयत साफ है कि चारों के रोग दूर करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसका रोग गोभी से दूर होगा उसको गोभी देता हूँ, जिसका काढ़े से होगा उसको काढ़ा देता हूँ, जिसको चौना प्राप्त होगा उसको चौन प्राप्त देता हूँ, जब तक मेरी नीयत साफ है, मैं सबको अच्छा करना चाहता हूँ, तब तक आप मुझ पर पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकते कि उसको आपने शासन दिया और मुझको काढ़ा क्यों दे रहे हैं। मेरी नीयत खराब हो तो आप दोष लगा सकते हैं। धर्मशास्त्र या ईश्वर की नीयत में हम कोई खराबी नहीं मान सकते। इसलिए किसका कल्याण किस कर्म से होगा ये ईश्वर और उनके बाद ऋषियों ने जो हमें बताया है उस पर विश्वास करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। मनमाना हम कुछ कर्म करके ये चाहें कि हमारा कल्याण हो जाएगा तो वैसे ही होगा कि आप एक ऐसा हॉस्पिटल खोल दीजिए, सब दवाइयाँ पड़ी हैं, रोगी आए कोई भी दवा ले और चला जाए, क्या परिस्थिति होगी आप सोच लीजिए। मैंने आप मेरे भी पूछे मैं उस कर्म को
आपका मैं देने को भैया हूँ, उसके बारे में ऐसे ही जान लूंगा कि क्या आपने मेरे बारे में जान रखा है कि मैं कौन सा कर्म करता हूँ या नहीं। दूसरा ये कि ये जानने मान लीजिए, एक बात मैं बता दूं, अगर मैं उन कर्मों को ठीक से कर रहा हूँ तो मेरा कल्याण होगा, अगर मैं उन कर्मों को ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो मेरा अकल्याण होगा। इससे ज्यादा जानकर आप या ये सभा क्या करेगी?
मैं बता दूं, हम लोग आस्तिक आस्तिक होने का दावा करते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि धर्मशास्त्रों के एक एक अक्षर पर विश्वास करते हैं और अधिक से अधिक पालन करने का प्रयत्न करते हैं। 70% पालन करने का दावा मैं समझता हूँ इस युग में कोई नहीं कर सकता, पर मैं व्यक्तिगत रूप से अधिक पालन करने का प्रयत्न करता हूँ, ये आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। ब्राह्मण के धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान और प्रतिज्ञा, छह कर्म जो ब्राह्मण के बताए गए हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से अधिक प्रयत्न करके कर रहा हूँ, ये मैं आपको विश्वास दिला दे। पर यदि मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरा दोष है, हिंदू धर्म शास्त्र का नहीं, इसका फल मुझे मिलेगा, हिंदू धर्म शास्त्र को नहीं और किसी को नहीं। मैं समझता हूँ इतने से आपको संतोष होना चाहिए।
दिस इज पॉजिटिव इन द लास्ट
टू डॉक्टर जाकिर नाइक, इट इज बीन कोटेड बाय सुप्रीमा नथरी एज इट इज सेड दैट वुमेन इज योर सेल्फ, यू मे गो एज यू लाइक, डू यू लाइक टू हैव गिव एनी कमेंट ऑन दिस? थैंक यू।
आई डू अग्री दैट सुप्रीमा नथरी एंड आई रेड द कॉन्ट्रोवर्शियल कॉलम इन विच ही हैज मेंशन दैट इन द कुरान इट इज मेंशन दैट the women are the tilt, sorry, it is not the tilt, she has not mentioned that, that's what the Quran mentioned. She has mentioned that for the husband, the woman is the farmland, not the tilt. The Quran mentioned the tilt, but it is approximately the same meaning. She has mentioned that it is mentioned in the Quran, he does not give the reference that for the husband, the wife is the farmland and you can approach them when you like. Along with that, she has said that the women are considered as properties. And she quotes the Quran and saying Surah Imran that the women, the gold, everything are possessions. The women, the children, the gold and horses are the possessions. Again, she is misquoting. She did not give the complete quotation. She was referring to Surah Imran, chapter number 3, verse number 14, which says that the women and sons, and the gold and silver, and the horses garnished for excellence, and the farmland are possessions which a man is proud of. Which man is not proud of a good wife? Quran says women, including wife and daughters, and sons. Which father is not proud of his son? Which husband should not be proud of his wife? And which wife should not be proud of the husband if he's good? So where is Quran talking that as though their property? And regarding the first question, that Quran mentions that the women are as farmland, she does not give the quotation. Where are you going to find in the full Quran, where does she mention, where does it mention in the Quran that wives are considered as farmland? She is referring to Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 23. But for the exact answer, you have to refer to the previous verse, Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 222, and then come to 223. Verse number 222 quotes that when they ask thee concerning menstrual period, I'm quoting the Quran, you can check it up. Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 222, when they ask thee concerning menstrual period, tell them, it's a hurt and pollution. So do not approach your wife during the period. Approach them after that clean. And any doctor will tell you that if you have intercourse during menstrual period, it will hurt the wife, and besides that, it will cause certain diseases. It will be harmful for the wife as well as for the husband. The Quran is very scientifically based, telling do not approach your wife when during the menstrual courses. And then the verse continues. The next verse, Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 223, says that your wives are like the tilth. Approach your tilth when you like, and approach them in the way Allah has ordained you. Quran is saying, don't approach in the time of the menstrual period. Otherwise, you have to be good to them whenever like. You can approach them whenever they like. They can approach you. What's the harm in that? She misquotes as though women are like property. This verse is linked to the earlier verse talking about should wives be approached during menstrual period, and the Quran says no. It's a hurt and pollution for both. Hope that answers the question then.
Friends, we had a very interesting. Oh, I think we had enough. I think we should stop now.
If anybody follows special religion, there will be a problem. He is representing Sanatan Dham. That means he wants to say Sanatan Dham by the very nature of fundamentalist.
No, I can't allow this question because it's already way past time. So we all
please repeat your question.
If you follow secularism, you won't be able to solve any problem. That means you are representing Sanatan Dham. That means with the opinion or the view of Sanatan Dham, you want to say that by the very nature, Sanatan Dham is fundamentalist. That means you want to go against secularism. Then how can you blame Muslim fundamentalism?
There are three parts of this question. Firstly,
2 minutes per part.
All right. 2 minutes per part. Thank you. I thought 2 minutes for the whole question. Firstly, the secularism, the anti-word for secularism is not fundamentalism. The anti-word for secularism is theism. To believe in God, to believe in the world hereafter, to believe in the principle that whatever we are doing here, we have to answer somewhere. This is the principle against the secularism. So if we accept this principle, there will be solution for all problems. If you don't accept this thing, then problems will not be solved. I never said that fundamentalism is the solution for all the questions. Part one. Part two, I never criticized the Muslim fundamentalism in the way it's being done. If Dr. Zakir Naik is correct, the way in which he puts the principles, the fundamentalism means that we should have faith and we should have knowledge of the fundamental principles of Islam and we should follow and practice it, then I 101% agree with him. This type of fundamentalism. this kind of fundamentalism is always welcome. The unfortunate part is that many times every good thing is being misused. We should always know what is being misused. Whether Islam is being misused, fundamentalism of Islam is being misused, or it is whether it is used properly or it is being misused. Anything can, even God can be misused. Even God can be misused. So the responsibility is of the person who is misusing the fundamentalism or misusing the religion. It's not the religion which is a block. It's not the fundamentalism in this definition which is a block. It is the misuse of religion, and misuse of what will not be blocked. Misuse of democracy, you are knowing what is happening. Misuse of secularism, you are knowing what is happening. And what was the third part of your question? In which cover? Are you satisfied? Thank you.
Thank you very much for coming to this program. In case any of you all have any specific questions to ask any of the speakers, you have a few minutes to let this program end because I think everyone wants to go home.
I want to tell them.
Oh, very good. Thank you very much for attending.